प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सहे गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडौतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन को जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वै वंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनो बेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतले उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे सैसे 88 ही उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरू विनती करूं दरू चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम शरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिल लेंगे पूछेंगे कुसलात, आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तो मेरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे, अवगुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूं, बोहर पिता कुलाद, मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरे विकार। तुम दाता दुख वंजना मेरी करो संभारे, पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। बंदे तू कर बंदगी जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। कबीर दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोए, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कबू ना होए। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गरे वो बहुर न लगता डर। परम पिता परमात्मा सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव, ये वो परमात्मा है जिसने सर्वसृष्टि की रचना की है। ये वो परमेश्वर है जो दुखी प्राणी को सुखी कर सकता है, प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए पाप कर्मों को, आने वाले जीवन में भयंकर दुखों को वो परमेश्वर नाश कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ये वो परमात्मा है कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर, जो पाप विनाशक है और मासा घटे न तिल बधे विदना लिखे जो लेख और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जमजोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है वो कुल के सतगुरु एक। ये वो परमात्मा है जो प्रत्येक असंभव काम को संभव कर सकते हैं। कबीर परमेश्वर की, कबीर देव की डिक्शनरी में, कबीर परमेश्वर के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है, इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये परमात्मा इस काल के लोक में आते हैं और काल के द्वारा अपने अज्ञानी संदेशवाहकों द्वारा इतना अज्ञान फैला दिया गया होता है कि प्रत्येक प्राणी परमात्मा की परिभाषा डेफिनेशन से भी अपरिचित हो जाता है। वो परमेश्वर नए सिरे से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और उसमें के जो अज्ञानी गुरु, जो काल प्रेरित संत ऋषि महर्षि होते हैं, वो उस परमेश्वर का जबरदस्त विरोध करते हैं, राजा और प्रजा को भ्रमित करके उस प्रभु का विरोधी बना देते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रत्येक बार अपने कार्य को पूर्ण रूप से सफलता से करके जाते हैं। जैसा कि आप सुनते हो कि परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं, सतयुग में आते हैं, उसमें उनका एक नाम सत्सुकृत प्रचलित रहता है, उसके अतिरिक्त अन्य भी नामों से वो कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन एक जो सत्सुकृत नाम है इसमें वो पूर्ण एक लीला करते हैं, नवजात शिशु के रूप में प्रकट होते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं होते, फिर लीला करते हुए बड़े होते हैं और छोटी ही आयु में वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। और उस समय के जितने भी ज्ञानी वो विद्वान कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, वो टोटल अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, परमात्मा के सत्ज्ञान का विरोध करके जनता को भ्रमित रखते हैं। कुछ एक प्राणी ही परमात्मा को पहचान पाते हैं, उनका वो उद्धार सतयुग में कर देते हैं। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में परमात्मा जब आते हैं, उनका नाम मुनिंदर होता है, ऋषि मुनिंदर। उसमें भी यही स्थिति होती है कि परमात्मा समझाते हैं, कहते हैं कि प्रभु पूर्ण परमात्मा कोई और है, तुम जिस भगवान की भक्ति करते हो ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, इसकी भक्ति से तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु उस अज्ञान से परिपूर्ण वो ऋषि महर्षि परमात्मा का विरोध करते हैं, जनता को सत्य से अपरिचित रखते हैं। फिर परमात्मा द्वापर युग में आते हैं, उसमें उनका नाम करुणा में रहता है। इसी प्रकार एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, पूरा जीवन एक मनुष्य का, एक पूरा मनुष्य का जैसा जीवन वो जी करके एक लीला करके प्रत्येक युग में जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा कलयुग में आते हैं और कलयुग में उनका नाम कबीर होता है, ये कबीर नाम कलयुग के अंत तक चलेगा, ये इनकी समर्थता का प्रमाण होगा। अन्य रूपों में भी वो आते रहते हैं, वैसे भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन कबीर रूप में जो आए थे इस कलयुग में सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक परमेश्वर इस धरातल पर रहे और 500 वर्ष की आयु से ही इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगे। जिनके सामने वो प्राकांड विद्वान महर्षि कहलाते थे वो भी निरुत्तर हो जाते थे, लेकिन मानते कति नहीं थे, क्योंकि वो काल प्रेरित होते हैं। उस परमेश्वर ने प्रत्येक युग में आकर के अपने तत्व ज्ञान का ढंडोरा बजाया, ढोल पीटा। परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हे लरे, हीरे माणक मोती बरसें यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कि चारों युगों में हम आए और मेरे संतों ने भी मेरे ज्ञान का डंडोरा पीटा, ऊंची आवाज लगा लगा कर जनता को पुकार पुकार के बताया कि तुम तो साधना करते हो गलत है, ये सच साधना जो हम बता रहे हैं ये। लेकिन ये भोली जनता हीरे और मोतियों को छोड़कर कंकर पत्थर वो डले उठाए फिर रहे हैं, आन उपासना रूपी ये ढेल डले उठा रखे हैं, कंकर इकट्ठी कर रखी हैं हीरे और मोती की जानकर। परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ऊंची आवाज लगाकर हेला देकर हमने कहा कि हीरे माणक ये मोती वर्षे ये तत्व ज्ञान रूपी इस यथार्थ भक्ति से जो बनने वाली कमाई है वो हीरे मोती जानो, और आन उपासना जो अन्य पूजाएं हम करते हैं वो डले ढो रहे हैं, वो डले कंकर पत्थर हमने अपने सिर पे रखे हैं, ये जान करके हमने बहुत धन इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन वो धन नहीं है, वो भक्ति धन नहीं है। परमात्मा क्या बताते थे, परमात्मा हर प्रकार से अपनी प्यारी आत्माओं को समझाने का प्रयत्न करते हैं, गद्य और पद्य भाग दोनों ही उच्च बोल करके सुनाते हैं। क्या कहते थे प्रभु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गैरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मत दे दी है बालम बैरे 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 नू, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल रहे निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बो मैं ये भूल रहे निज डेरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बरे नोम तदे दिए बालम बरे नो। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मत दे दी है बाल्यम। मतो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मतो दे दी है बाल्यम बैरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मतो दे दी है बालम बरे नू, मतो दे दी है बालम बरे नू, मतो दे दी बरे नू, मतो दे दी है बालम बरे नू। पुणात्माओं परमात्मा न जाने कितनी प्रकार से सोई हुई आत्मा को जगाना चाहते, न जाने कितने एग्जाम्पल कोड करते, न जाने कितने प्रकार की वाणी हमारे को सुनाते हैं। वैसे तो 10-20 वाणी बहुत है, 10-20 शब्द बहुत है समझने के लिए, लेकिन हम काल के कुएं में गिर चुके हैं। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, कुएं में जब रस्से के बांध कर पानी निकालने के लिए एक पात्र प्रयोग करते हैं, उसको डोल भी कहते हैं, उसको बाल्टी, एक बाल्टी होती है, तो वो बाल्टी कई बार रस्सा टूट जाने से और वो बाल्टी कुएं में गिर जाती है। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक कुंडे से होते हैं, उन्हें कांटा बोले, उसके कुंडे से होते हैं हुक, 20-21 हुक इकट्ठे ही उल्टे सुलटे, उसका ऐसे ग्रुप सा बना करके झुंड सा वो बना होता है और उसके ऊपर एक रस्सा बांधा होता है, लोहे के हुक होते हैं वो, 21-25-22 ऐसे 17-18 होते हैं, उनको ऐसे कुएं में रस्सी से डाल दिया जाता है और वो बाल्टी ना जाने कौन से हुक में उलझ के और बाहर आ जावे। वैसे तो एक हुक भी डाला जा सकता, लेकिन नहीं, उस एक से तो इधर उधर हो जाए, वो 21-22 कई ज्यादा वो हुक डाल दिए जाते हैं लोहे के बड़ा करके, तो ना जाने वो कौन से में उलझ जा। तो ऐसे ही परमात्मा ने ना जाने कितने प्रकार की वाणी और भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण हमें बता करके, भिन्न भिन्न प्रकार की ये वाणी, भिन्न भिन्न प्रकार के ये एग्जाम्पल उदाहरण हमें निकालने के लिए, ये हजारों की संख्या में ये वाणी रूपी कुंडे, वाणी रूपी हुक इस काल के कुएं में डाल रखे, और ना जाने किस पुण्यात्मा के कौन सी वाणी खटक जा और उद्धार हो जाए उसका, वो परमात्मा के चरणों में लग जावे। इसलिए क्या बताते हैं कि आत्मा रो रही है अब और परमात्मा से पुकार करती है कि प्रभु मेरे को तो इस मन रूपी इस बैरे के साथ आपने बांध दिया, ब्याह दी, इसके साथ मेरा विवाह कर दिया। ये मन बैरा है, बैरा मीन ये अच्छे काम की तरफ तो चलता नहीं, रुचि नहीं करता और उसको अवॉइड कर देता है, कानों पे घटाल देता है। और कोई उठपटांग काम हो उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनता है, उस पर तुरंत लग जाता है और ना जाने कितनी मेहनत कर डालता है। अब जैसे हम देखा करते गांव में, अब भी ऐसा ही है। अब कोई ये कहता कि चलो सत्संग में चलोगे, वहां सत्संग हो रहा है, तो कोई ध्यान नहीं देता। और कोई यूं कहे आपस में, वैसे कोई स्वाभाविक बातें कर रहा हो कि आज बरवाड़ा में कंपटीशन होगा, तो आसपास से गुजरने वाला भी नू कान लगा के सुनेगा, अरे क्या क्या कह रहे हो भाई, वो कहां होगा कंपटीशन? कंपटीशन ये एक नई बीमारी चली है थोड़े से दिन से, उसमें 3-4 पार्टियां गाने बजाने वाले होते हैं, उसको कंपटीशन बोलते हैं, फिर उनको इनाम देते हैं, भाई इसने बहुत बढ़िया रागनी गाई, इसने बहुत अच्छे गाना, इसका अच्छा सुर है, तो उसमें नरे उठ पटांग सारी रात मुंह बाएं बैठा रहा, हो पीटे रहा, लेना एक न देने देर ऐसे पड़े रहा रेत के मां। वहां जाने के लिए तो मन तुरंत तैयार हो जा, 100 काम छोड़ दे और जरा से संकेत से बड़ा ध्यान से सुनता है, उस आरूढ़ होकर पहुंच जाता है, चाहे घर वाले मना करें तो भी उस कंपटीशन रागनी सुन या सिनेमा देखने के लिए पहुंच जाता है। और इसको कहे कि चलो सत्संग में आत्म कल्याण करा लो, इनको फिर देखेंगे, वो टाइम है यू, हम तो बालक हैं, बड़े बूढ़े होकर के भगवान की भक्ति करा करें, ऐसी शिक्षा और देन लग जाए, स्वीकार हमारा ज्ञान हमारी प्रार्थना स्वीकार ना करके हमें शिक्षा देने लग जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि ये मन बह रहा है और ये इस आत्मा का कंट्रोलर बना दिया। ये मन जो है ये काल है, ज्योति निरंजन है, इसने काल भगवान ने अपना एक एलिमेंट छोड़ रखा है आत्मा के साथ, प्रत्येक आत्मा के साथ, और ये भ्रमित रखता है इसको, अच्छे काम पे लगन नहीं देना, बुराई की तट मिल जा वहीं जा करना। अब देखो शराब तम्बाकू बीड़ी हुक्के में डाल के प्रयोग करना, मांस खाना, बताइए किसने बताया और कैसे तम्बाकू बनाया, फिर तम्बाकू बीजा, फिर पता नहीं उसमें कितना साजबाज मिला के, फिर तम्बाकू कूट छेद के 36 पंगे करके फिर हुक्का बनाया हुआ तोब, इसमें दिमाग खराब रखा और फिर पीओ गुड़ गुड़ अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ठोक इस पवित्र स्थान भगवान के स्थान में यो ढूंढ लिया और बना लिया कि कितना तरीका, फिर उसमें पानी डालना मार बेगन तार दे, फिर यह शराब बना ली, वो तेरा गजब हुई, ये कैसे किस प्रकार के केड़ंगा इकट्ठा कर लिया और परमात्मा के नाम पर कह दे इसके 3 तौड़ी पर हैं। ये बुराई को तो स्वीकार शीघ्र कर लेता है, जब तक ये परमात्मा के चरणों में प्राणी नहीं आता तब तक इसने बहुत ऊट पटांग बातें अच्छी लगती हैं, किसी की चुगली करने लग जा, चाहे सारी रात बैठा रहा बतलाएं जागा, और कोई ऐसे ही जैसे सिनेमा ले आते थे पहले, ये VCR चले थे, अरे इतनी बड़ी बड़ी कैसेट होया करती, वो बड़ी बड़ी, और वो 3 घंटे की एक होती थी और VCR किराए पर लाते थे, उस VCR में फिर तीन फिल्म लाते थे 3-3 घंटे की, अकाज सारी ये लूट लेंगे, शाम ने 8 बजे शुरू कर देते, सारा परिवार बैठ जाता और 3-3 घंटे की तीनों देखेंगे, भाई पीछे ला रखे सारी रात मुंह बाएं और बकवाद देखेंगे, और सत्संग में आ जा या तावा नहीं रह गया था 2 घंटे में नौकरन लग जाएगा, 2 घंटे में ठाए तो बिना उठे, अरे तेरा गजब। तो ये मन है ना, ये भगवान के अच्छे काम को स्वीकार करना नहीं चाहता, उसके लिए ये आत्मा तड़फ रही है, कह रही है। और यदि ये भक्ति करना चाहता है तो बकवादा का नहीं, जिससे कोई लाभ ना हो वहां इस आत्मा के डड़े डुआएं जागा। जैसे आप देखते हो जगन्नाथ के दर्शनार्थ ना अमरनाथ की यात्रा पे और कि तक केदारनाथ की यात्रा पे इतने ऊंचे पहाड़ों पर कर बर्फ में कर पता नहीं कित नीचे देखो तो 1000 फुट गहरी खाई और एक मेरे ख्याल में 10 इंच का रास्ता उसके साथ साथ नू 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 और नीचे पैर थलस जाते ढूंढा नहीं पावे पर वहां भी पहुंच जाता है नू गए वहां पहुंच जा और उसको कह दे बरवाला चलो भगवान की भक्ति करो बिछे बिछायत मैट मिले बड़े बनाई रोटी भगवान के दरबार में हर भोजन पाओ भगवान के गुण गाओ ना वहां के दरिया है वहां चलेंगे वैष्णो माता के वहां चला जाएगा। तो इस काल ने इस मन ने इस आत्मा को भ्रमित करके अपने जाल में फंसाए रखना है। परमेश्वर आते हैं तब इस आत्मा का उद्धार करते हैं और तत्व ज्ञान प्रचार करके इसको जगाते हैं। फिर ये जाग जाती है तब क्या कहती है मत दे दी है बाल्य में बैरेनु मत दे दी है बाल्य में बैरेनु संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गैरेनु ये दास इतने बड़े बड़े सत्संग करके दो दो ढाई ढाई घंटे एक टाइम और महीने में दो दो बार सत्संग करते हैं एक बार में 3-3 दिन सत्संग होता है 4-4 घंटे डेली और पूरे प्रमाण के साथ उदाहरण सहित सदग्रंथों का ज्ञान निर्मल ज्ञान आपके समक्ष सुनाता हूं। फिर भी आप ये ज्ञान सुनकर उपदेश भी ले लेते हो और क्योंकि हमारी संख्या भी कम है और ये डड़े डोनिया की संख्या भी ज्यादा है जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनमें से कोई भी आता है आपको भ्रमित कर देता है और फिर आप उनकी बातों को फिर भी मान जाते हो क्योंकि ये मन है ये बड़ा उस्ताद है इसने ठेका ले रखा है काल ते कि मैं तेरे जालते बार इसने जान को दूं। अब क्या बताते हैं भगवान ये काल जो है संसारी दी गल्ला चीन है ना बुझे शब्द जुगै रेनु और मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मैं रेनु। एक बार वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं परंतु एक आधा उदाहरण कति काटे का होता है जो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। जींद में पटियाला चौक है एक वहां पर एक रमेश जैन नाम का एक भक्त हमारा वो पहले ऐसे ही पहले तो जैनी था और फिर वो साधना जैन धर्माली तक करें करें थे बाकी धार्मिक जैसे अपने शिव जी की कृष्ण की राम की वो भी करें थे सब कुछ करते करते क्या था कि उसकी पत्नी का नाम कमलेश है उस बहन कमलेश को तो सांस की बीमारी उनके एक लड़की थी उसके दौरे पड़े मिर्गी आवे दो बच्चे जुड़ुआ थे अनिल सुनील नाम है उनके अब तो वो तगड़े हो रहे हैं वो दोनों इतने बीमार रहे हैं वो कह रहे थे जी महीने में 30 दिन में से 20-15 दिन ये हॉस्पिटल में रखने पड़ते और बहुत नुकसान रहता है। तो ऐसे हमारे एक भक्त के संपर्क में वो आए उसने उनको समझाया कि आप सतगुरु जी का उपदेश ले लो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओ तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अब वो तंग हो रहे थे कति सब जगह थक लिए थे सारे जैन धर्म की साधना कर ली थी और हिंदू धर्माली भी कर ली थी और जो भी जहां की तह पीर पैक या कहीं भी बताऊं थे वहां भी जाते थे। अब मरता क्या नहीं करता दुखी प्राणी तो फिरेगा कोई बता दे वहीं जाना पड़ेगा उसको। अब उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे आप उपदेश ले लो इस दास के विषय में उसने बताया और बहुत से उदाहरण दिए कि ऐसे उनके वो ठीक हो गए उनके ऐसे बीमारी थी वो तकलीफ ठीक होगी वो ऐसे हानि होती रहती थी वो ठीक हो गए। तो उसने दो चारों से पूछ पाछ कर उसका विश्वास दृढ़ हो गया कि नाम हम ले लेंगे। जब वो नाम लेने आए तो उनको सारी मर्यादा बता दी, कोई और पूजा नहीं करोगे बिल्कुल भी, और पूजा करोगे तो हमारा नाम खंड हो जाएगा, कोई लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने सारी स्वीकार कर ली, अब जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। बच्चों ने भी उपदेश ले लिया, उस बहन ने भी उपदेश ले लिया, भगत जी ने भी उपदेश ले लिया। कमलेश, उस बहन का जो श्वास की बीमारी थी वह ठीक होगी, लड़की के दौरे पड़ने बंद हो गए, वो लड़के उसके बाद बीमार हुए नहीं। ऐसे 3 महीने उनके बीत गए और फिर क्या हो गया कि गुग्गा पीर की पूजा आएगी नौमी, वह गुग्गा पीर की एक नौमी होती है बादवे में, उस गुग्गा पीर की पूजा आ गई और उस बहन ने को तो समझा दिया गया था और उसको भी आनंद आ गया था कि हमारे तो सुख हो गया, तो उसने वो सब पूजाएं छोड़ दी थी। एक उसकी सहेली आ गई पड़ोस में, तो वो कहने लगी ये कमलेश आज पीर पे नहीं चल दी ना, वो गुग्गा नहीं पूजा तने, गुग्गा जी की पूजा नहीं की। इन्हें बोली बेबे मन ने छोड़ दी, हमने तो पूजा छोड़ दी, हम केवल वही पूजा करेंगे जो गुरु जी ने बता रखी है, और पूजा हम करें को नहीं, मन तो त्याग। तो वह बहन ले रही थी किसी इन बड़े बड़े संतों को जिनके करोड़ों शिष्य हैं, वहां से उपदेश ले रही थी उसकी सहेली। तो वो कहने लगी बहन मैंने भी उपदेश ले रखा और तेरे तो 10 साल पहले का ले रही हूं मैं, बताई उस फलाने संत का नाम ले रखा है, और बहन मैंने भी थोड़े दिन पूजा छोड़ दी थी, मेरी तो बिरयान माटी हो गई थी, मैं तो फिर ये सारी पूजा करने लगी जी सा आ गया, और फिर बताया कि एक हमारे रिश्तेदार ने ऐसे पूजा छोड़ दी थी, उसका एक का लड़का था वो मर गया बेबे हैं ये। तो कमलेश डरा दी उसने, उसने पांच थोड़े से देर तो पैर अपने दृढ़ रखे, मन थोड़ा सा दृढ़ रखा, लेकिन इस तरह की बातें सुनकर वह भी घबराएगी। तो उस बहन ने क्या किया, वह गुग्गा की पूजा कर दी, उसकी किमें जो लटोटर था कर दिया। तो उस अगले उसी रात ने उसका तो सांस नहीं जुड़े, सांस वो दमा हो गया, लड़की के मिर्गी शुरू होगी, दोनों बालक बीमार हो गए वो हॉस्पिटल में। तो अगले दिन शाम ने वो रमेश भगत अपनी दुकान से जब उसके घर ने आया तो उसकी दुर्गति देखी, वो फिर हमारे उस भगत के पास गया जिसने हमारे से उसका मेल कराया था, नाम दिलाया था, और रमेश कहने लगा भाई महाराज फिर वो काम हो गया, वह कमलेश बीमार होगी, लड़की के दौरे पड़ने लगे और दोनों बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल में लेके गया हुई, हॉस्पिटल में दाखिल करा दिए। तो भगत कहने लगा भाई ऐसी बात नहीं हो सकती, कोई गड़बड़ करी है घर में, कोई गलती की है तुमने। वो नो कहना भाई कति गलती नहीं करे कि हमने सही पूजा कर रहे। वो भक्त बोला मैं नहीं मान सकता इस बात, नो कहते कहते वो घर न आ गए, घर उस रमेश के घर आ गए। तो उसने पूछा कमलेश तने कोई पूजा पाजा तो और नहीं कर दी, ना भाई मैं क्यों करूं थी, वह डर दी ना बता जाई बता दी तो यू गड़ेगा रमेश उसका पति। तो वैसे ही देखता वैसे ही कर रहा था, मैं पीछे चला गया, बरंडा था पिछली साइड में मकान का, वहां दर रखी उसने तमाखू की पिंडी सी और जोत ला रखी वह बुजरी पलड़े दिन की वो रखी, उठाना भूल गई उसने, वो पता लगना था ना तो और बिरार मट्टी हो उनकी वह बतावा नहीं हो दूना दुख हो जाता। तो वो कहने लगा यू क्या कर रखा तुमने पीछे लटोटर सा। तो रमेश बोले ये तो गुग्गा की पूजा करा करते हम इस तरह, उससे पूछा कितने यू क्या करा ये क्या कर दिया, इन्होंने बोली मैंने गुग्गा की पूजा कर दी गुग्गा पीर की। वो भगत बोला गुग्गा फिर आ बढ़िया थारे मुश्किल तो निकाल लिया था, यो गुग्गा फिर बुला लिया तने गार्डन जोगी, ये गुग्गा तो ये काम करेगा थरे सारे बिरान मट्टी होगी बीमार होगी और कितना मना किया था, 3 महीने 4 महीने तो ठीक रही, थारे सारा सुख हो गया, फिर भी तेरा दृढ़ विश्वास नहीं हुआ। न बोली भाई क्या करूं, एक पड़ोसन आ गई उसने डरा दी। न बोली एक का पूजा ना करा करती, नाम ले रही थी उसने, उसका एक का छोरा था वो मर गया भाई, मन तो डर लग गया, जहां तो पूज दिया। ये पहला गड्ढा करती तो पूजा करती है, सारी बयान मट्टी हो रही थी, जिया समझ में क्यों ना आई तरह। तो उसके बाद और रमेश ने दमकाई कर डी करी तंत्र नाश कर दिया, बता के बात थी यार। वह बोली पाछे नहीं करू, मैं कति नहीं करू। इब क्या समाधान हो कि गुरुदेव के पास चलो, अक्षमा याचना करो, तुम्हारा नाम खंड हो गया, पुण्यात्मा वो अपना बिजली का कनेक्शन ले लिया, और कनेक्शन ले लिया और कनेक्शन जब तक ठीक है तो आपका पंखा भी चलेगा, ट्यूब भी जगेगी, एंड पंप भी चलेगा और चक्की भी चलेगी, दूध भी बिलोएगी, सारे काम करेगी। और कनेक्शन गया कट तो पंखे हवा में बेसिक घूम चल पड़ी है थोड़े बहुत, नहीं कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसे ही अब आपका काम, आपने प्रभु की पावर से कनेक्शन मिल गया ले लिया, और इस आपका काम ही पावर से होगा सारा। और आपने जो कनेक्शन दिया काट कट गया, किसी भी कारण से खंड हो गया आपका नाम उपदेश, तो प्रभु की पावर आपके पास नहीं पहुंचेगी, तो आपके काम सब ठप हो जाएंगे। पुण्यात्माओं ये पल्ला गांठ लगा लो, जब तक आप परमेश्वर की मर्यादा में रहोगे आपके सारे काम ठीक रहेंगे। और आपने जिस दिन मर्यादा तोड़ दी, परमात्मा 100 कोस दूर हो जाएगा, वो कनेक्शन कट जाएगा, आपको नहीं लाभ मिलेगा। परमात्मा कहते हैं तो उन्होंने फिर अक्षमा याचना की, दोबारा उपदेश दिया। उसके बाद उन्होंने कभी नाम खंड नहीं किया। आज लगभग उनको 12-13 वर्ष हो गए और प्रत्येक समागम में आते हैं और सब मौज होगी, कोई बीमारी घर में रही नहीं। लड़की की भी शादी कर दी, उसके दौरे पड़ते थे, बच्चे भी जवान हो गए हुए। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते 100 वर्ष तक हमारी पूजा, परमेश्वर कबीर जी कहते 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा। सतगुरु की पूजा मीन जैसे सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत आपको मार्गदर्शन करें वो पूजा। और एक दिन आन उपासी, एक दिन और पूजा कर लोगे, कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। बताओ 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ओहो अब तुम न तो जरासी लगे और काम बिगड़ गया सारा। जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी वनवास में थे और वहां सीता जी थी, लक्ष्मण जी थे और वहां एक बगीची बो रखी थी फूल फालों की, तो उसमें एक रावण का मामा मारिच एक हिरण बनकर उस बाड़ी को तोड़ने लग गया बगीची को, और सोने का हिरण बन गया स्वर्ण, बहुत सुंदर था। सीता जी ने कहा कि ये हिरण मेरे लिए लाओ मुर्दा या जिंदा, उन्होंने हट कर ली। ये आपने कथा सुन भी रखी है। श्री राम जी जब वहां से चलने लगे, सीता की जिद देखकर हठ देख करके राम लक्ष्मण को कहकर चले गए, भैया तू मत आना मेरे पीछे से, अकेली सीता जी को नहीं छोड़ना है, और आए भी किसी कोई मजबूरी भी बन जावे तो इसके चारों तरफ मंत्रित रेखा खींच कर आना। तो कहने का भाव यह है कि श्री रामचंद्र जी चले गए वहां जाकर के उस मायावी हिरण ने मारीच ने आकाशवाणी की, हा राम हाय लक्ष्मण मर गया, हाय लक्ष्मण मर गया। तो सीता जी ने लक्ष्मण को कहा तेरा भाई मर गया तू जा। अब लक्ष्मण नहीं चाहे था कि मैं जाऊं, कोई आपत्ति ना आ जाए, लेकिन सीता ने कटु शब्द कहे कि तू चाहता है कि तेरा भाई मर जा और तू मुझे पत्नी बनाना चाहता है। इस तरह की कटु शब्द सुनने से उसने कहा, माता मैं जाऊं हूं, बड़े भाई की बहन पत्नी है, लेकिन एक काम करना, मैं ये चारों तरफ ये रेखा खींच के जाता हूं, इसको टी गए, इससे बाहर मत जाना। ऐसा कहकर वो चला गया। पीछे से रावण ने षड्यंत्र रचा, एक साधु रूप बनाया और आकर के कुटिया से दूर खड़ा होकर कहा, माई आटा देना। अब सीता जी ने कहा कि बाबा जी अंदर आके ले जाओ, ऋषि जी लो आटा ले जाओ। अब जो ही रावण आगे को चला, वो कुटिया से बाहर निकली, कुटिया से थोड़ी दूरी पर वो रेखा थी। रावण निकट आने लगा तो एकदम उस लक्ष्मण द्वारा लगाई गई रेखा से अग्नि की लपट निकली रावण को खत्म करने के लिए। रावण एकदम दस कदम पीछे गया, बैक गेरते, और कहा, माई बाहर आकर के आटा डाल जा, तूने आटा देना है, तो नहीं तो साधु रुष्ट हो जाएगा और ये कर देगा और वो हो जाएगा। अब सीता जी ने सोचा, बाबा जी तो है संत है, और क्या क्या फर्क पड़े है इस रेखा का उल्लंघन करके, अभी डाल के आटा में फट वापस आ जाऊंगी। अब उसने यही अपनी सोचते और उस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया सीता ने। जो ही वो लक्ष्मण उस रेखा को पार करके गई, दो कदम आगे गई थी, तभी रावण ने भाग करके उसको उठा लिया और उठा करके अपनी कैद में डाल दी। अब क्या जुल्म हुआ, सीता ने तो ये सोचा था क्या फर्क पड़ा है, रेखा को पार कर लेती हूं और शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। वो बावली बूझ थे, इतना कुछ कह के गए थे कि तू इससे बाहर मत निकलना, वो मूर्ख थे क्या? लेकिन हम अपने अपनी सूझ मनमाना आचरण करके हम दुखी हो रहे हैं। सीता ने मनमाना आचरण किया, रेखा का उल्लंघन, मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, और क्या बना, आप दुखी हुई, श्री राम दुखी हुआ, लक्ष्मण भटका, और करोड़ों आदमी मर गए जब सीता वापस आई। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो मर्यादा है, इसको तुम तोड़ दोगे या लक्ष्मण के सी रेखा समझ लेना, काल तुरंत आपको चक ले जाएगा, फिर नहीं बात सूत मावगी। तो जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बण, कहते जब तक ये आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, तब तक काल तेरा कोई भी अटैक, किसी प्रकार का भी झटका इन पुण्यात्माओं को नहीं लग सकता। तो हम परमात्मा की बात को, तत्व ज्ञान को महत्व कम देते हैं और संसारी लोगों की बातों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं को उसको आचरण कर लेते हैं। उसके बारे में बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दिए बाल्यम बैरे नू। संसारी लोगों की बातों को तो तुरंत मान जा, और हम ये गहरी बातें जो बहुत गूढ़ रहस्य आपको बता रहे हैं, यथार्थ ज्ञान बता रहे हैं, इनको सुनने को तैयार नहीं, इनके ऊपर आचरण नहीं करते। और मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती, जैसे प्रत्येक गांव में और प्रत्येक नगर में शहर में कितने तरह पीर की मंडी मड़ी पावगी, और कहीं पर कोई बाबा जी की के मारे यहां बाबा की पूजा करती, जोड़ डाले बाबा की हैं, फलाने बाबा की। और परमात्मा कहते हैं उन मुर्दे जो मर चुके हैं उन मत प्रीत लगावे, और ना जाने सतगुरु मैं रेनु, जिंदे सतगुरु को छोड़कर उन मरे हुए बाबा जी और उन गुरु पीर माने गुरु, वो नकली पीर गुरु हुआ करते थे, वो भूत बन गए, और वो भूत बनकर जहां उनके अंतिम संस्कार किया था उस अपने शव के उस ऊपर बनी हुई यादगार के वहीं चक्कर काटते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई वैद्य था और उस वैद्य की होगी मृत्यु, वह जब जीवित था नवज देखता था, दवाई बनाकर घोट के बढ़िया पुड़िया दे देता था, अगले बच्चा बेटा बेटी इसको ऐसे ऐसे खाना, ये इसके जो है पथ्य रखना, ये परहेज रखना, वो बच्चा वो रोगी स्वस्थ हो जाता था उस जीवित वैद्य के द्वारा दी गई औषधि से। अब वो वैद्य मर जावे, उस वैद्य की मृत्यु हो जा, उसके बाद उस वैद्य के जहां अंतिम संस्कार करे वहां यादगार बना दे कोई, और फिर वहां मत्था टेक कर नो कहे वैद्य जी मुझे स्वस्थ कर दो, हे वैद्य जी मुझे स्वस्थ कर दो। क्या ये बात न्याय संगत है? नहीं। अब वहां वो वैद्य नहीं है जो नब्ज देख करके दवाई देता था, रोग को पहचान लेता था, वैसा ही वैद्य और जीवित ढूंढना होगा और उस वैद्य के पास जाकर के आपने वो दवाई औषधि लेनी होगी। इसी प्रकार जो संत गुरु पीर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी यादगारें बनी हुई हैं, उनकी हम वहां जाकर के कोई मन्नत मानते हैं, कुछ कुछ करते हैं, मन्नत मांगते हैं, वहां कुछ संकल्प करते हैं, फिर वहीं डाल आते हैं, तो उन मरे हुए गुरु पीर के उन यादगारों पर जाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपने जीवित संत गुरु ढूंढना होगा जो तत्व ज्ञान से परिचित हो, पूरा ज्ञान हो, समाधान हो, उसको नाम देने का आदेश हो, उस संत से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। प्रभु कहते हैं कबीर परमेश्वर आप ही परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, और आप ही एक भक्त की भूमिका करते हैं हमें समझाने के लिए। कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में और पर्वत पर्वत ना जिसने भी जहां बताया वहीं घूम रहा था, लेकिन उस परमेश्वर जैसे संत मिले, पूर्ण संत मिले, उनसे जब उपदेश लिया, उनके बताए मार्ग से साधनाएं की, तो फिर हमारे सारे काम सिरे जो भगवान करता है, जो परमात्मा से लाभ मिलने हम मिलते हैं हम सुना करते, तो वो वहां नहीं मिले जो इधर उधर हम भटक रहे थे, उस संत के पास मिले, राम जैसे संत मिले। ओए होए कबीर परमेश्वर कहते हैं मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम, जो मेरा प्रतिनिधि मेरे द्वारा भेजा गया संत है उसको मेरा ही स्वरूप समझना, अर्थात मम संत मेरे संत को मुझे ही समझ, मेरा ही स्वरूपम। पुण्यात्मा जैसे प्रधानमंत्री जी अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव, अपना कोई जो है नुमाइंदा प्रतिनिधि यहां भेज दे इसार में और उसको पावर दे देता है, इतनी पावर दे देता है कि वो प्रतिनिधि यहां के मुख्यमंत्री से भी ज्यादा लाभ आपको दे सकता है, तो उसको प्रधानमंत्री कहें कहो चाहे वो प्रतिनिधि कहो, क्योंकि उसके पास पावर प्रधानमंत्री वाली ही है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम, मेरे द्वारा भेजा गया जो संत है उसको मेरा ही स्वरूप समझना, अर्थात उससे तुम्हें वही लाभ होंगे जो मैं खुद दूंगा। अब क्या बता रहे हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकट विराज देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकट विराज देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलिया खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नु, ऊंची थलिया खेती बोवे भूल गए निज डेरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। पुण्यात्माओं, अज्ञानता के आधार से हमने परमात्मा की परिभाषा क्या सुन रखी थी कि परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश ही देखा जा सकता है। एक बात तो ये विचार करने की है कि हमारी बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी थी भगवान के बारे में। हम विचार भी नहीं कर सकते थे इतना भी कि कहते हैं प्रभु का प्रकाश देखा जा सकता है, प्रभु निराकार है। अब जैसे कोई कहे कि सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, ये बात कोई जचने वाली नहीं है कि हमने सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य कैसा है कि वो तो निराकार है। हमने ट्यूब लाइट देखा, ट्यूब कैसा है, ट्यूब निराकार है। ये थ्योरी किसी आंखों वाले की नहीं हो सकती, अंधे की अंधे से सुनी हुई हो सकती है। ऐसे ही हमने अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि गुरु संत जिनसे सुना, उन्होंने यही बताया परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है। वो दिखाई थोड़े देता है, वो तो अनुभव की बात होती है। और फिर कहते हैं परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, शरीर के अंदर समाधि दशा में प्रकाश देखा जा सकता है। भले आदमी, अब परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखा? परमात्मा परमेश्वर स शरीर है, मनुष्य सदृश उसका शरीर है। जब तक हम तत्वज्ञान से अपरिचित रहेंगे, हम भक्ति नहीं कर सकते, हम पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारा पूरा सब कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति मार्ग पर अधिक समय तक नहीं चल सकते। जिस समय आपको परिपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, फिर आपका मोक्ष निश्चित है, क्योंकि आप डगमग नहीं हो सकते, आप पथ भ्रष्ट नहीं हो सकते। रस्ते से भ्रष्ट होकर के, रस्ते दम दिशा भ्रष्ट होकर के, दूसरी दिशा में चल करके, कुमार्ग पर चल कर हम अपने निज घर नहीं जा पाए। अब हमें दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, ये अपने निज घर का है। हम कभी डगमग नहीं होंगे। थे 100 आदमी बैक आए हमें, इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है या निराकार है। परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है, और वो सह शरीर है। अंतर इतना है कि प्रभु का शरीर तेजो में है, प्रकाश है, प्रकाश युक्त है, प्रकाश में है। जैसे अब सूर्य है, ये प्रकाश युक्त है, तेजो में है। इसी प्रकार परमेश्वर का शरीर तेजो में है, इसलिए वेदों में उसे अग्नि शब्द से संबोधित किया है। अग्नि का अर्थ होता है प्रकाश युक्त, प्रकाश में परमेश्वर। अग्नि तनुरसी हे परमेश, प्रकाश में परमेश्वर आपका शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस परमेश्वर का सबके परिपो धारण पोषण करने के लिए भी उसका एक शरीर है।